आप सबका राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चार नियमों के विषय पर। आप सबको मालूम है कि यहां पर इस मंदिर में चार नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है, उनमें से चार हैं, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं करना और मदिरापान नहीं करना। तो ये चार चीजें क्यों हमें नहीं करनी चाहिए और इसके पीछे इतिहास क्या है, शास्त्र प्रमाण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये कहां बताया गया है कि हमें ये चार चीजें नहीं करनी चाहिए, ये तो आप लोग कह रहे हैं, आपकी संस्था में ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन और तो कहीं हमने ऐसा नहीं सुना है। कौन से शास्त्र में ऐसा बताया गया है? वास्तव में हर एक शास्त्र में बताया गया है, लेकिन आज हम विशेषकर श्रीमद् भागवत की एक कथा सुनाएंगे जिससे ये सिद्ध होगा कि वास्तव में ये जो चार वर्जित कार्य हैं ये धर्म के विरुद्ध हैं। ये कथा उस समय की है जब महाराज परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के सुपुत्र थे, वो इस पृथ्वी पर राज कर रहे थे। तो क्योंकि वो सारे पृथ्वी के राजा थे तो वो अक्सर सारे पृथ्वी भर में भ्रमण किया करते थे, दिग्विजयी राजा थे। इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी पर और कोई राजा नहीं थे, कई राजा थे, लेकिन सभी महाराज परीक्षित के अधीन थे। जिस समय की महाराज युधिष्ठिर के समय भी हुआ करता था, ठीक उसी तरह से ये दूसरे जो छोटे छोटे राजा थे ये समय समय पर महाराज परीक्षित को कर दिया करते थे और अधीन हुआ करते थे महाराज परीक्षित के। तो एक बार जब महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्तिमान कली ये एक गाय और बैल को मार रहा है, आक्रमण कर रहा है, हिंसा कर रहा है उनके ऊपर। अब नैमिषारण्य में ये कथा सूत गोस्वामी वहां पर एकत्रित ऋषि मुनियों को सुना रहे थे। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि जब परीक्षित महाराज ने ऐसे देखा तो उनको तुरंत बहुत क्रोध आया और फिर अपना तलवार धारण किया और उसे दंड देने के लिए वो तैयार हुए। तो उस समय तुरंत उधर ऋषि मुनि जो एकत्र थे, उनके जो प्रमुख ऋषि थे शौनक ऋषि, उन्होंने प्रश्न किया कि हे सूत गोस्वामी, ये ऐसा क्यों है कि महाराज परीक्षित ने दंड देने की इच्छा रखी? हमें यह आश्चर्य हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वास्तव में उस काल के जो ऋषि मुनि थे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पहली बात तो जो एक शूद्र व्यक्ति है, जो राज करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, वो एक राजा का पोशाक पहने, राजा बनने का ढोंग करे, और दूसरी बात इससे भी ज्यादा भयानक कि कोई भी व्यक्ति, भले वो कली क्यों न हो, वो गाय और बैल के ऊपर आक्रमण कर सके, ये वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये मूर्तिमान कली, कली का अधिष्ठाता देव है, व्यक्ति है, और उसका काम यह होता है कि समय पर कली के गुणों को समाज में प्रविष्ट कराना, यह उसका काम होता है। जिस तरह से जो जेलर होता है उसका काम होता है कि सारे कैदियों को बंद रखना, हर एक व्यक्ति का काम होता है। तो कली का काम यह था, किस तरह से दुराचारी जो वृत्ति है वो कलयुग में, इस युग में प्रविष्ट कराना। तो जब महाराज परीक्षित ने देखा कि गाय और बैल पे आक्रमण हो रहा है तो वो सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति को जानते थे, धर्म परायण राजा थे, वो जानते थे कि बैल ये धर्म या नीति का प्रतीक है, इसलिए बैल को पिता कहते हैं, और जो गाय है वो पृथ्वी का प्रतीक है इसलिए उसे माता कहते हैं। बैल हमारी खेती में मदद करता है और उसकी सहायता से अनाज का उत्पादन होता है जिससे हमारा पेट हम भर सकते हैं और हृष्ट पुष्ट रह सकते हैं, और गाय हमें बहुत ही चमत्कारी वस्तु देती है और वो है दूध। उस दूध का पान करके हम पौष्टिकता तो पा ही सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी बिल्कुल तेज हो जाता है। किस लिए? आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए। गाय और बैल की जहां रक्षा होती है वो एक प्रगतिशील समाज माना जाता है, और जहां ये वैदिक संस्कृति लोग पालन मानते नहीं हैं तो वहां पे गाय और बैल की हत्या की जाती है। तो उस समय तो बिल्कुल ये कल्पना के बाहर था। परीक्षित महाराज ने देखा तो तुरंत आश्चर्यचकित हो गए, दंड देने के लिए आए। लेकिन जो नैमिषारण्य के ऋषि थे वो सोच रहे थे दंड ही क्यों, मृत्यु दंड देना चाहिए इसको। तो उनको ये आश्चर्य हुआ कि राजा परीक्षित ने केवल उनको दंड क्यों दिया, उनको जान से क्यों नहीं मार डाला उस व्यक्ति को जो मूर्तिमान कली है। तो जब ऐसा प्रश्न शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा तो फिर सूत गोस्वामी उत्तर देने लगे, कहने लगे कि राजा परीक्षित बड़े प्रामाणिक राजा थे और भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार वो कार्य किया करते थे। आखिर वो थे वंशज पंच पांडवों के, अर्जुन के पोते थे वो, और जहां भी वो भ्रमण किया करते थे तो दूसरे सारे राजाओं का दमन करते थे। लेकिन किस लिए दमन करते थे? केवल अपने अहंकार के लिए नहीं, केवल अपना हक या अधिकार जमाने के लिए नहीं, लेकिन ये देखने के लिए कि क्या सार्व पृथ्वी भर में भगवान के बनाए हुए नियम का पालन हो रहा है, सारे जो छोटे छोटे राजा हैं वो खुद क्या धर्म का पालन कर रहे हैं, और क्या वो अपने अपने प्रजा को से धर्म का पालन करा रहे हैं। ये देखने के लिए महाराज परीक्षित जैसे राजाएं भ्रमण किया करते थे। तो एक बार ऐसे भ्रमण करते करते जब उन्होंने कई प्रांतों को पराजित कर दिया, राजा प्रांतों के राजा को पराजित कर दिया, तो हर जगह लोग उनका गुणगान तो करते लेकिन साथ साथ उनके पूर्वजों का गुणगान भी करते। वो सुनते कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का बहुत गहरा संबंध था उनके पूर्वजों के प्रति जो कि पंच पांडव थे, और खास करके उनके जो दादा थे अर्जुन, उनसे भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत ही निकट का और प्रेम का संबंध था। इस तरह से जहां भी महाराज परीक्षित जाते वहां पर लोग पांडवों का, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते, और वो कहते कि देखो भगवान श्री कृष्ण भगवान होने के बावजूद पांडवों की किस तरह से उन्होंने सेवा की, कभी उनके वो सारथी बने, कभी उनके दूत बने, कभी उनके चौकीदार बने, कभी उनके मित्र बने। तो इस तरह से गुणगान करते रहते थे, और महाराज परीक्षित इस गुणगान को सुनकर बड़े प्रफुल्लित हो उठते थे, और उनका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से भर आता था, बड़े प्रसन्न होते थे। और फिर जो भी ऐसी स्तुति करते थे उनको कीमती हीरे मोती वगैरह वो दान में दे देते थे। तो ऐसे जो प्रशंसा करने की विधि है या पद्धति है वो प्रामाणिक राजाओं के प्रति हुआ करता था। आप में से जो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं या जो यहां सुबह को श्रीमद् भागवत क्लास में आते हैं आपने सुना होगा कि महाराज पृथु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब महाराज पृथु राजगद्दी पर बैठे तो उस समय सारे जो सूत मागध इत्यादि वंदीगण थे उन्होंने भी महाराज पृथु का गुणगान किया, और उस समय पृथु महाराज ने कहा कि मेरा गुणगान नहीं करो, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ कार्य ऐसे किया ही नहीं है। अगर ऐसे समय बीतने के बाद तुम्हें पता चले कि मैंने कोई अद्भुत कार्य किए हो, तब मेरा गुणगान करना। तो ऐसे लोगों की एक प्रथा थी, हर रोज सुबह राजा को जगाने के लिए वंदी सूत मागद इत्यादि बाजा बजाते थे, वाद्य बजाए करते थे, जिससे कि राजा को सुबह निद्रा से जागरण होता था। लेकिन ये जो प्रशंसा है, ये इस तरह की चापलूसी नहीं है जो आजकल चलती है, जो राजनेताओं को मक्खन लगाते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि उस जमाने में राजा बड़े योग्य भी थे, और जो परीक्षित महाराज गुणगान सुन रहे थे वो तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुन रहे थे और पंच पांडवों का गुणगान सुन रहे थे। तो ये सब सुनकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो एक बार ऐसे घूमते घूमते वो एक अद्भुत दृश्य उनको दिखने में आया, और वो था ये शूद्र जो कि राजा का वेश पहना हुआ था, जो कि वास्तव में कली था, वो गाय और बैल को मार रहा था। महाराज परीक्षित के उस स्थान में पहुंचने के पहले क्या घटना हुई वो भी सूत गोस्वामी शनक आदि ऋषि को बता रहे थे। कहने लगे कि एक बार धर्म, मूर्तिमान धर्म ने एक बैल का रूप धारण किया। दुर्भाग्यवश उसका केवल एक ही पैर था उस बैल का, और लंगड़ाते लंगड़ाते वो चल रहा था किसी न किसी तरह से, और अचानक उसकी मुलाकात हुई गाय से, जो कि मूर्तिमान पृथ्वी थी। और उसने कहा, हे अंबे, हे माता, क्योंकि गाय तो माता है क्योंकि वो दूध देती है, ये आपकी ये दुर्दशा देखकर मुझे तो बहुत दुख लग रहा है। आपका जो सौंदर्य है वो खत्म हो चुका है, दुख की छाया से आपका चेहरा आच्छादित है। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अंदर से क्या कोई बहुत खतरनाक रोग हुआ है आपको? क्या आप कोई रिश्तेदार से के विरह अनुभव कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको दुख महसूस हो रहा है? क्या कारण है आपके दुख का? क्या ये हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि पापी लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है, और इसलिए पाप की वजह से यहां अकाल और सूखा पड़ रहा है? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि लोग यहां यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए देवी देवताओं को यज्ञ के फल नहीं मिल रहे हैं? या तो फिर क्या आप दुखी इसलिए हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आपके ऊपर जो पाप का बोझ था, पापी लोगों का बोझ था, वो निकाल दिया, वो कृष्ण आज आपके ऊपर नहीं रहे, वो चले गए अपने धाम में, क्या इस बात का शोक हो रहा है आपको? क्या आपको इस बात का शोक हो रहा है कि आजकल जो राज सिंहासन पर लोग बैठे हैं, क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं लेकिन क्षत्रिय है नहीं, शूद्र हैं? तो ये दशा देखकर क्या आपको दुख हो रहा है? और ये शूद्र जो राज कर रहे हैं, इतना उपद्रव कर रहे हैं समाज में, इनको देखकर क्या आपको दुख हो रहा है? या तो फिर आपको इस बात का दुख हो रहा है कि आजकल के तथाकथित ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे, और उन्होंने केवल ऐसे लोगों का आश्रय लिया है जो शूद्र के बराबर हैं, जिनमें कोई गुण नहीं है, और ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में सरस्वती देवी आ गई है, तो क्या आपको इस बात का दुख है? क्या समस्या है आपकी, बताइए हमें। तो उस समय बड़े शांति से पृथ्वी माता ने उत्तर दिया कि हे मूर्तिमान धर्म, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी। स्वयं आपकी ये दुर्दशा है, ये तो मेरे दुख का पहला कारण है। आपके तो पहले चार पैर हुआ करते थे, अभी तो आपके केवल एक पैर हैं। और ये एक पैर मतलब क्या कि धर्म के तीन पैर नष्ट हो चुके हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि धर्म के चार खंबे होते हैं, तपह, दया, शौचम और सत्यम। तो तपह मतलब तपस्या, दया, शौच मतलब स्वच्छता, तो इस तरह से ये चार जो खंभे हैं धर्म के, ये कलयुग में केवल एक खंभा रह गया है और वो है सत्यम, सत्य का। बाकी तीन जो है तपह दया शौचम, ये नष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए जो बैल चार पैरों वाला होता है वो आज माता गाय के सामने केवल एक पैर से खड़ा था। तो पृथ्वी माता ने कहा कि ठीक है, ये तो मेरा दुख का कारण तो है ही, लेकिन मैं दुखी इसलिए भी हूं कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने मुझे पापी लोगों के बोझ से मुक्त करा दिया, वो आज यहां पर नहीं है, वो लीला करके लौट कर चले गए और कलयुग का प्रभाव यहां पर शुरू हो गया है। और क्योंकि कलि भीतर आ गए तो यहां सब जगह अभी बहुत ही दुराचार चल रहा है, दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये देखकर मुझे दुख हो रहा है। वास्तव में वही भगवान जिनके अनंत गुण हैं, दिव्य गुण हैं, वो जो चले गए उनकी कृपा से ही आपने वास्तव में सारे पृथ्वी भर पर इतना सुख फैला दिया था, लेकिन वो भगवान चले गए। स्वयं लक्ष्मी देवी की प्राप्ति के लिए देवी देवता गण जो है बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी ने अपने कमल पुष्पों के कुंज से, वो कुंज को त्याग कर वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आश्रय लिए हैं उनकी सेवा करने के लिए। और मेरा सौभाग्य देखिए कि वही चरण कमल मेरे ऊपर पड़े हैं। कितने साल तक वो जब यहां लीला कर रहे थे तो मेरा जो शरीर है वो उनके पद चिन्हों के ऊपर जो चिन्ह हैं उनसे अलंकृत थे, जैसे कि अंकुश, गदा, कमल पुष्प, वज्र, ध्वज इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण और उनके अनेक जो अवतार होते हैं उनको पहचानने का तरीका होता है। उनमें से एक तरीका, ये एक प्रमाण ये है कि उनके हस्त कमलों में और उनके पद, उनके चरण कमलों में चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों से हम पहचान सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं भगवान हूं तो सबसे पहला हम उन्हें कह सकते हैं आपका हाथ दिखाइए। अगर ये सारे अंकुश और फिर वज्र, ध्वज, कमल पुष्प इत्यादि ऐसे सारे चिन्ह रहे तो फिर हम सोच भी सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर स्वाभाविक तौर से नहीं हो चिन्ह तो हम उसको भगवान कभी भी नहीं मान सकते। और जैसे शास्त्र में बताया है वैसे चिन्ह होने चाहिए। तो ये सारे चिन्हों से मेरा शरीर अलंकृत था, तो वो भगवान अभी हमें छोड़कर चले गए हैं, तो उस विरह में मैं बड़ी दुखी हूं। तो इस तरह से पृथ्वी माता और धर्म, मूर्तिमान धर्म के बीच में वार्तालाप चल रहा था। और ठीक उस समय परीक्षित महाराज वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक शूद्र जो कि स्वयं कलि है, एक राजा का वेश धारण करके वहां आ चुका है और दोनों को आक्रमण कर रहा है, दोनों के ऊपर। तो इस तरह से परीक्षित महाराज जो बाहर निकले थे इसलिए कि उनको गंध आ गया था कि कलि का प्रभाव आ चुका है मेरे राज्य में। उनको कैसे यह गंध आ गया? क्योंकि उन्होंने देखा कि कलयुग के लक्षण प्रविष्ट हो चुके हैं मेरे राज्य में। और ये लक्षण क्या है? ये लक्षण है कि लोगों में या जन समाज, जन साधारण में ये चार बुरी आदतें शुरू हो गई हैं। कौन सी हैं ये चार बुरी आदतें? वही व्यभिचार, मांसाहार, मदिरापान और जुआ। ये चार आदतें धीरे धीरे लोगों में छाने लगी। तब परीक्षित महाराज ने पहचान लिया कि हां, कलि का प्रभाव शुरू हो रहा है। तो तुरंत निकल पड़े और उस समय जब वो वहां आए तो बिल्कुल क्रोधित हो गए, अपना तलवार निकाला और कहने लगे कि अरे दुष्ट, तुम कौन हो? तुम्हारी ये मजाल कि मेरे संरक्षण में जो प्राणी रहते हैं उनके ऊपर तुम आक्रमण करने का साहस है तुम्हारे पास? कौन हो तुम? और वैसे भी हे बैल, हे सौरभी, सौरभी मतलब सुरभी का पुत्र, सुरभी मतलब गाय, वास्तव में गोलोक वृंदावन की गाय है सुरभि। तो हे सौरभि, सुरभि के पुत्र, आप कौन हो? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते हो। क्या आप कोई देवता हो जिसने वेश बैल का वेश धारण करके यहां पृथ्वी लोक पे आए हो? और हे गो माता, ये आपकी दशा कैसे हो गई? इस तरह से परीक्षित महाराज बड़े दुखी थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये जांच करना चाहिए कि ये परिस्थिति कैसे आई। वास्तव में गाय की रक्षा करना और बैल की रक्षा करना ये सारे मानव समाज के लिए बड़ा आवश्यक है। ये क्योंकि पशु जो होते हैं ये भी प्रजा कहलाते हैं। जिस तरह से अगर कोई गांव में कोई जंगली पशु आए और मनुष्य को खाने लगे, उनकी हत्या करने लगे, तो वहां की जो पुलिस है या सेना है अवश्य उन पशुओं को जाकर मार डालेगी। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियां समाज में लोगों को कष्ट दे रहे हैं या पशुओं को भी कष्ट दे रहे हैं, तो राजा का कर्तव्य बनता है कि उन दुराचारी व्यक्तियों को दंड दे, बल्कि उनको जान से मारे। ये मनु के सिद्धांत हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से परीक्षित महाराज शास्त्रज्ञ थे, वो जानते थे कि किस तरह से किसको दंड देना चाहिए। तो इस तरह जब वो पूछा उन्होंने धर्म मूर्तिमान धर्म को, तो धर्म ने जवाब दिया कि हमारी पीड़ा क्यों हुई, ये तो एक बड़ा विचित्र प्रश्न है आपका। अब कई ऐसे मुनि हैं जो कहते हैं कि हमारा जो कष्ट होता है, जो जीवन में कष्ट आता है, वो तो अपने भाग्य से मिलता है, पूर्व कर्मों से मिलता है। कोई मुनि कहते हैं कि समय के अनुसार जो किस्मत है उसके अनुसार आ जाता है। कोई कहते हैं कि कोई एक ऐसे नियंत्रण करता है ऊपर जिनकी वजह से हमारे जीवन में कष्ट आता है। कोई कहता है कि प्रकृति के अनुसार, प्रकृति की वजह से ये कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। कोई कहते हैं कि कोई समझ नहीं सकता कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आता है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि हमारी ये दशा क्यों हुई है, ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और आप तो धर्मज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, आप तो सब अच्छी तरह से जानते हो। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत समझ लिया कि ये जो साधारण बैल नहीं है, साक्षात धर्म है। क्योंकि धर्म ने बिल्कुल शिकायत नहीं की कि ये शूद्र, इसने मुझे मेरे ऊपर आक्रमण किया, या इस व्यक्ति ने मेरे एक पैर को काट दिया। नहीं, देखिए ये वैष्णव के गुण होते हैं। उसके ऊपर कोई आक्रमण होता है, अत्याचार होता है, कोई बुरे शब्द बोल देता है, उसके बारे में शिकायत नहीं करता है। तो महाराज परीक्षित समझ गए और कहने लगे कि आप तो मूर्तिमान साक्षात धर्म ही हैं, आप बिल्कुल डरे नहीं, भय न करें, क्योंकि मेरे राज में ऐसे कभी नहीं हो सकता। और हे कली, क्या तुम सोच रहे हो क्योंकि गांडीव धारण करने वाले अर्जुन और गदाधर श्री कृष्ण अभी पृथ्वी पर नहीं रहे, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम यहां प्रवेश नहीं कर सकते जब तक ये राजा परीक्षित यहां पर है। और हे मूर्तिमान धर्म, आप भी कृपा करके बिल्कुल भयभीत न होइए, क्योंकि मेरे राज में सब प्राणियों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। जो राजा अपने प्रजा को रक्षा नहीं दे सकता है, वो राजा उसकी आयु खत्म हो जाती है और अगला जन्म भी उसका खत्म हो जाता है। इसलिए जो भी मेरे अंदर शक्ति है उससे मैं आपकी रक्षा करूंगा, बिल्कुल चिंतित मत होइए। और उसके साथ साथ महाराज परीक्षित ने तलवार ऊपर उठाई और उस शूद्र की हत्या करने ही वाले थे, और तुरंत उस समय उस शूद्र ने अपना राजा का वेश त्याग दिया और महाराज परीक्षित के शरण में आ गए। जो सच्चा क्षत्रिय होता है कभी भी इस तरह से घबरा कर शरण में नहीं जाता है। इसी तरह से जो असली नेता है और जो नहीं है उनको हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि पहले जमाने में जो नेता हुआ करते थे राजा, युद्ध के समय वो सबसे सामने होते थे, युद्ध करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर आदेश देते हैं और बेचारे कोई सिपाही बाहर जाते हैं। तो आज पुराने क्षत्रिय ऐसे नहीं थे, राजा भी ऐसे थे, सैनिक भी ऐसे थे, सामने आगे जाते थे। तो सैनिक को शरणागत जाना शत्रु के, ये अच्छा नहीं था, या तो जीतो या तो प्राण त्यागो, ये था क्षत्रिय का धर्म। लेकिन ये नकली क्षत्रिय था, शूद्र था वास्तव में। और आजकल की दशा ऐसे हो गई है कि जो क्षत्रिय का काम है वो शूद्र लोग कर रहे हैं, और शूद्र से भी नीचे जो म्लेच्छ हैं, यवन हैं, चांडाल हैं। म्लेच्छ लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो शास्त्रों के आज्ञा के की लापरवाही करके मांसाहार करते हैं, मांस खाते हैं। और जो यवन होते हैं उनसे भी नीच, चंडाल होते हैं, वो तो कुत्ते का मांस खाते हैं, इतने नीच। तो आजकल जो राज शासन कर रहे हैं वो तो ऐसे ही लोग हैं। तो इस तरह से महाराज परीक्षित ने बतलाया अपने व्यवहार से कि आदर्श क्षत्रिय क्या होना चाहिए, और कली ने अपने व्यवहार से बताया कि आजकल के नेता कैसे होते हैं। तो जब महाराज क्षत्रिय के सामने कली ने शरण ग्रहण किया तो फिर महाराज परीक्षित उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि क्षत्रिय का नियम होता है कि कोई व्यक्ति उसके अगर शरण में जाए तो वो उसकी हत्या नहीं कर सकता। तो इस तरह से उस व्यक्ति कली ने कहा कि हे राजन, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कृपा करके क्षमा कर दें और कोई ना कोई मुझे आपके राज्य में एक जगह दे दें जहां मैं रह सकता हूं शांति से, और ताकि आपके राज्य में कोई उपद्रव नहीं होगा। तो महाराज परीक्षित ने जब कली का इस रूप देखा तो सोचने लगे कि ठीक है, मुझे मारना तो उचित नहीं है। तो कहा कि हे कली, तुम मेरे राज्य में तो बिल्कुल नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे राज्य के बाहर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे राज्य में तो ये चार बुरे कार्य कोई नहीं करता है। और तुम जहां रहोगे, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो, अधर्म के भाई हो, बड़े भाई हो, इसलिए जहां तुम रहोगे वहां पर अधर्म चलेगा, और मैं राजा हूं तो मेरा कर्तव्य है कि प्रजा को अधर्म से बचाना, इसलिए मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दे सकता हूं, तुम्हें यहां से बाहर जाना चाहिए। उस समय महाराज परीक्षित ने बैल को मूर्तिमान धर्म को बताया कि हे बैल, तपः दया शौचम सत्यम इति पादः कृते कृतः अधर्मांशय त्रयो भग्नाः स्मय संगम मदैस्तव। कि हे मूर्तिमान धर्म, आपके पहले ये चार पैर थे, लेकिन स्मय संग और मद, इन तीन चीजों से आपके तीन पैर टूट गए। स्मय मतलब घमंड, अहंकार, संग मतलब स्त्री संग, स्त्री पुरुष संग, मदय मतलब मदिरापान, इन तीन चीजों की वजह से अधर्म फैल गया है और आपके तीन पैर टूट गए। जो सत्ययुग में धर्म के चारों पैर हुआ करते थे, और सारे लोग सत्ययुग में धर्मपरायण थे, और ये तपह दया शौचम और सत्यम ये चारों धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते थे, इसलिए सभी लोग ब्राह्मण कहलाते थे, बल्कि परमहंस कहलाते थे सत्ययुग में। लेकिन त्रेता युग जब आरंभ हुआ तो 25% धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो गए, तो धर्म के केवल तीन पैर रह गए। और फिर जब द्वापर युग आया तो और 25% जो है धर्म के सिद्धांत नष्ट हो गए, तो धर्म के केवल दो पैर रह गए, 50% धर्म रह गया। और जब कलयुग आ गया तो और 25% धर्म नष्ट हो गया, तो कलयुग के शुरुआत में केवल 25% धर्म रह गया, कलयुग की शुरुआत में। और इसलिए मूर्तिमान धर्म जो है बैल के रूप में एक पैर के ऊपर लड़खड़ाता हुआ, लंगड़ाता हुआ चल रहा था, और आजकल केवल 5000 साल बीत गए हैं कलयुग के, वो एक पैर भी प्राय नष्ट होने को आया है। आजकल कहां आपको सत्य मिलेगा, हर आदमी झूठ बोलता है आजकल। आजकल कौन है जो कह सकता है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है? यहां कोई मंदिर में है, हम में से कोई बोल सकते हैं कि हमने झूठ बोला ही नहीं है कभी? नहीं। एक कलयुग में जो आखिरी पैर है धर्म का, वो भी नष्ट हो चुका है। तो महाराज परीक्षित कह रहे थे कि इसी कली की वजह से ये सब, तुम्हारा चौथा पैर भी अभी नष्ट कर रहा है, ये इसको मैं दंड दूंगा, लेकिन अभी मेरे शरण में आया है तो इसको मार नहीं सकता। और कली कह रहा है कि मुझे आप आपके राज्य के बाहर मत भेजिए, क्योंकि जहां भी आप भेजेंगे वहां आपके तीर धनुष मुझे दिखाई पड़ेंगे, और आपके राज्य में सब जगह नियमों का लोग पालन कर रहे हैं, इसलिए मैं कहां जाऊं, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। तो मेरे लिए कोई उपयुक्त जगह स्थान आप ढूंढकर मुझे दे दीजिए, जहां कि मैं वहां रह जाऊं सुखी से। तो महाराज परीक्षित ने सोचा और कहने लगे, एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया उन्होंने, और उनका जो उत्तर है वो आज यहां पर इस श्लोक में है। तो आइए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। कृपया दोहराइए, सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। यहां सूत गोस्वामी कहते हैं यत्र अधर्म चतुर्विधः। वो कहते हैं कि अधर्म चार प्रकार के होते हैं, और वो हैं द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। द्यूतम मतलब जुआ खेलना, पानम मतलब मदिरा पान करना, स्त्रियः मतलब व्यभिचार करना, और सूना मतलब पशु हत्या करना। तो यहां स्पष्ट रूप से सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि ये चार कार्य जो हैं, ये अधर्म के चार खंभे हैं। यत्र अधर्मस चतुर्विधः, और ये अधर्म के चार खंभे और धर्म के चार खंभे ये अलग अलग हैं। तो जब ये अधर्म के कार्य हम करते हैं तो मानो कि हम धर्म के चार खंभों पर प्रहार कर रहे हैं। तो जब हम द्यूतम या जब हम जुआ खेलते हैं तो धर्म का कौन सा खंभा नष्ट होता है? सत्यम, क्योंकि जुआ खेलने के लिए हमें झूठ बोलना ही पड़ता है, और जुआ खेलने की वजह से आदमी झूठा बन ही जाता है। कई आदमी ऐसे हैं जो एक बार जुआ खेलने लगते हैं, यो भी एक तरह का नशा हो जाता है, फिर घर में इस बात को छुपाने के लिए झूठ बोलने लगते हैं, छुपाते हैं कि हम जुआ खेल रहे हैं, पैसे कहां जा रहे हैं, इसलिए झूठ ये स्वाभाविक तौर से बोलना पड़ता है, और इससे लोभ उत्पन्न हो जाता है, ये भी एक झूठी है। और ये जो जुआ है ये झूठ के ऊपर आधारित है, हम तो शरीर है नहीं, ये सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन जुआ वगैरह से हमें हमारे शारीरिक भावना और मजबूत हो जाती है। तो यह सबसे बड़ा झूठ है। और फिर पानम, पानम मतलब मदिरा पान करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, इससे कौन से धर्म का खंभा नष्ट हो जाता है? तपह, तपस्या। क्या शराब पीकर कोई आदमी तपस्या कर सकता है? आपने देखा है जो आदमी ज्यादा शराब पीते हैं क्या करते हैं? इधर उधर सोए पड़ते हैं या तो दंगा करते हैं। तपस्या करते हैं कभी? नहीं, उनसे तपस्या संभव नहीं है। तो सारी तपस्या नष्ट हो जाती है, क्योंकि मदिरा पान करना यह तमोगुण का लक्षण है। और फिर स्त्रियः, पुरुष स्त्री का अवैधिक संग, यह भी किस सिद्धांत के खिलाफ है? शौचम, स्वच्छ नहीं है। जो आदमी हमेशा इस तरह से सोचता है तो वो कैसे अपने मन में स्वच्छ रह सकता है? और मन में स्वच्छ नहीं है तो शरीर से कैसे स्वच्छ रह सकता है? और आखिर में सूना, सूना मतलब पशु हत्या। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि कई लोग कहते हैं कि हम मांसाहार करते हैं लेकिन हम तो पशु की हत्या नहीं करते। लेकिन अगर कोई आदमी पशु हत्या नहीं करता तो आप खाते कैसे? और आप बाजार से जाकर खरीदते हैं इसलिए तो वो आदमी पशु हत्या करता है। अगर बाजार में कोई ये चीज मांगता नहीं तो पशु हत्या क्यों करता? तो पशु हत्या का मतलब मांसाहार, मांसाहार का मतलब पशु हत्या। ये चार चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये अधर्म है। और कलयुग का मतलब है कि जब ये चार कार्य प्रजा में प्रविष्ट हो जाती हैं तब कलयुग आरंभ हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 17वें अध्याय से है। तो आप में से जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए कि पहले स्कंद के 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में यह बताया जाता है कि धर्म के चार खंभे कौन से हैं। और उसी अध्याय के 38वें श्लोक में, यानी इस श्लोक में बताया जाता है कि अधर्म के कौन से चार खंभे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहता है उसे धर्म के मार्ग में चलना होगा और अधर्म के कार्यों को त्यागना होगा। सत्ययुग में क्योंकि लोग धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे, तपह, दया, सत्यम और शौचम, इसलिए वो भगवान की शरणागति ले सकते थे। जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों का शरण नहीं लेता है वो कभी भी भगवान का शरण नहीं ले पाएगा। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति ये चार वर्जित कार्य करता है, द्यूतम, पानम, स्त्रीह, सूना, वो कभी भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये मतलब है इसका। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि ये चार चीजों को निश्चित रूप से त्याग दे। जिस हद तक हम इन चार चीजों से आसक्त रहेंगे ये हमारे बीच में और भगवान के बीच में एक पर्दा बन जाएंगे, एक अड़चन बन जाएंगे और हमारा मन कभी भी स्थिरता से भगवान के चरण कमलों में स्थित नहीं हो सकेगा। तो देखिए, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए हमें? तो अगर कोई आपको चैलेंज करे, जब आप प्रचार कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार हो, आपके मित्र हो, कोई भी हो, कि ये कहां बताया गया है शास्त्रों में, तो आप बता सकते हैं श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में, पट करके बता दीजिए, वहीं के वहीं उनकी बोली बंद हो जाएगी। फिर उन्हें दिखाइए, देखो सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और इससे हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े राजा भी क्यों ना हो, उनका भी जीवन नष्ट हो गया ये चार चीजों से। तो हम तो छोटे लोग हैं, हमारा जीवन तो नष्ट होने ही वाला है। देखिए, द्यूतम, द्यूतम मतलब जुआ खेलना। बताया जाता है कि क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध में ललकारे या जुए के लिए ललकारे तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो जुए में जाए तो उसका पाप भी उसे लगेगा और उसका जो परिणाम होगा उसे भी भुगतना पड़ेगा। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेलने के लिए वो तैयार हो गए, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन का षड्यंत्र था, कि किसी न किसी तरह से धोखेबाजी से महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया जाए। तो जुआ खेलने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राजा युधिष्ठिर अच्छी तरह से जुआ नहीं खेल सकते हैं, और शकुनी बड़े चतुर थे जुए खेल में। तो महाराज युधिष्ठिर अगर उस समय इनकार कर देते तो राज्य नहीं चला जाता उनका, और द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता, और यह भयंकर युद्ध नहीं होता। हाँ, अगर ये सब नहीं होता तो भगवद गीता नहीं होता, यह दूसरी बात है, यह भी भगवान की योजना थी कि हुई। लेकिन ऐसे चीजों से हम सीख भी सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो कि स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं, स्वयं धर्मराज कहलाते थे, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी भी जीवन में पाप नहीं किया था, पाप की छाया भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता था, ऐसे व्यक्ति ने जब जुआ खेलना शुरू कर दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। उनको वनवास में जाना पड़ा, इतना अपमान सहन करना पड़ा, इतना कष्ट हुआ, क्यों? जुए की वजह से। और साधारण लोग जो सत्ता मटका ये वो सब खेलते हैं, लॉटरी वगैरह करते हैं, इनका जीवन तो नष्ट हो ही जाता है। और आजकल ये भयंकर एक बीमारी आ गई है हमारे समाज में, कौन बनेगा करोड़पति, सभी लोग पागल होते जा रहे हैं, ये भी तो जुआ ही है। जुआ नहीं है तो और क्या है? सभी लोग जल्दी से जुआ खेल के करोड़पति बनना चाहते हैं। जुए का मतलब है कि बिना परिश्रम किए हम अमीर बनना चाहते हैं, इससे आदमी आलसी बन जाता है, और जब आलसी आदमी के पास बहुत धन होता है तो ये चारों चीजें करेगा, और तीन चीजें करेगा निश्चित रूप से। इसलिए जहां फिजूल का फालतू का पैसा आ जाता है तो वो आदमी का पतन होना ही है। हमारे पास दो पैसे कम क्यों ना हो, लेकिन ईमानदारी से जिए, ईमानदारी से कमाएं और भक्ति करें भगवान श्री कृष्ण की, ऐसा जीवन सुखी रहेगा। इसलिए हमें करोड़पति बनने की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे कपाल में लिखा है, भाग्य में लिखा है, तो न चाहते हुए भी करोड़ रुपए क्या 10 करोड़ आ जाएंगे, और अगर हमारे कपाल में नहीं लिखा है तो करोड़पति बनने के बजाय हम कंगाल हो जाएंगे। जो भाग्य में लिखा है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। 1 कौड़े पैसे अधिक या कम नहीं मिलेगी हमें जो कि हमें भाग्य में लिखा है। इसलिए जुआ हुआ में कोई हमें दिलचस्पी नहीं है। तो ये लॉटरी ये भी जुआ है, और आजकल सरकार भी ये सब लॉटरी चला रही है। कलयुग का लक्षण है कि सरकार जो है ये चारों कार्य बड़े पैमाने पे करती है, अधिकृत बना रही है इसे, ये है कलयुग का लक्षण। परीक्षित महाराज जैसे राजा जहां भी इन चार चीजों का गंध भी देखते थे तो तुरंत अपना तलवार धारण किए उन व्यक्तियों की हत्या करते थे जो कि इन कार्यों को करते थे। लेकिन आजकल सरकार क्या कर रही है, इसे अधिकृत रूप में बड़े पैमाने से फैला रही है। इसलिए जो घोड़े होते हैं, रेस कोर्स, घोड़े की स्पर्धा जिसमें लोग पैसे लगाते हैं, और ये लॉटरी टिकट और टीवी पे ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, ये तो सब जुआ है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जब महाराज युधिष्ठिर की ऐसी दशा हो गई तो हमारी क्या दशा होगी। और फिर पानम मतलब मदिरा पान करना, बेलगाम में तो काफी होता है, हर जगह पे हम देखते हैं शराब के अड्डे, लोग इधर उधर गड़गड़ाते हुए घूमते फिरते हैं, कितना शराब पीते हैं बेलगाम के लोग। इसलिए यहां प्रचार ज्यादा होना चाहिए, शराब पीकर कितने परिवार नष्ट हो जाते हैं, आप सबको अनुभव होगा, कई लोगों से आपको आप जानते भी होंगे जिनका परिवार नष्ट हो गया है शराब पीने की वजह से, और बेलगाम में तो सबसे ज्यादा। तो इसके लिए कोई उदाहरण दृष्टांत देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक स्त्री परस्त्री स्तंग करना, देखिए दुशासन दुर्योधन, उन्होंने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा, जो कि बिल्कुल अनैतिक था, अधर्म था, तो उनकी क्या दशा हुई? जब दुर्योधन ने ऐसे किया और द्रौपदी से इशारा किया बहुत क्रूर तरीके से, गंदे तरीके से, कि यहां आकर बैठो, उस समय भीमसेन ने वचन लिया। क्या वचन लिया? कि जिस जंगहा पर तुम यहां ऐसे इशारा कर रहे हो उन जंगों को मेरे गदे से मैं युद्ध भूमि में नष्ट कर दूंगा। और किया ना ऐसे भीमसेन ने, तो उसका परिणाम हुआ। केवल दुर्योधन ने ऐसे करना चाहा, इसलिए अंत में उसका क्या परिणाम हुआ। उसी तरह से जो व्यक्ति ऐसे व्यभिचार करने की इच्छा रखता है उसकी भी ऐसे ही मौत हो जाएगी, उसको ही ऐसे पापों का फल भुगतना पड़ेगा, उसका भी परिवार नष्ट हो जाएगा, मन की शांति नष्ट हो जाएगी, सारा पाप करना बैठेगा, करते बैठेगा। अजामिल की कथा तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने विवाहित अवस्था में होते हुए उसने परस्त्री संग किया, उसकी क्या दशा हो गई। और फिर सूना, सूना मतलब पशु हत्या। पहले जमाने में क्षत्रिय जो थे वो शिकार भी करते थे, शिकार उनके लिए अनुमति थी, क्योंकि जो क्षत्रिय है उसे युद्ध भूमि में जाना पड़ता है, सैनिकों के शत्रु की हत्या करना पड़ता है, सकेगा तो उसे थोड़ा अंदर से मजबूत बनाने के लिए, उसके साहस को बढ़ाने के लिए, उसे मारने के तीर चलाने के अभ्यास के लिए, ऐसे पशु हत्या के लिए अनुमति दी जाती थी। लेकिन फिर भी उसे ऐसे पशु हत्या का फल तो अवश्य मिलता था। ऐसा नहीं है कि वो पशु हत्या करे क्योंकि वो क्षत्रिय है वो पाप से मुक्त रहेगा, नहीं। इसके लिए उदाहरण हम देख सकते हैं, कितने ही उदाहरण ऐसे हुए। महाराज दशरथ भी, वो ऐसे शिकार करने गए थे और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी और उस आवाज से ही उन्होंने सुनकर तीर छोड़ दी, और फिर वो तीर किसको लग गई, श्रवण को, और उसके उसका परिणाम क्या हुआ, शाप मिला। क्या शाप मिला, कि उनके भी पुत्र से विरह हो जाएगी। और इस तरह से ये सारे घटना हुई आगे की रामायण की। तो इस तरह से शिकार के लिए भी जो आदमी जाता है या पशु हत्या करता है या पशु जो ऐसे मांसाहार करता है, ये भी बड़ा पाप है, उसका भी फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए कलयुग के लक्षण आज ये चार हैं, प्रमुख हैं। वैसे शास्त्र में बताया जाता है कि कलयुग मतलब क्या है, कलयुग की वजह से लोगों के जीवन की अवधि कम हो जाती है, लोगों में दया भावना कम हो जाती है, लोगों में जो धार्मिकता है वो कम हो जाती है। इस तरह से सारे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं हमारे अंदर समाज में। लेकिन जिस मात्रा में ये चार चीजें हो रही हैं उससे हमें पता चल सकता है कि कितनी तीव्रता से कलयुग आगे बढ़ रहा है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कली से कहा कि ये चार स्थान जहां भी ये चार कार्य होते हैं वहां तुम्हें निवास करना पड़ेगा। तो कली ने कहा, लेकिन आपके राज्य में तो ऐसे कोई स्थान ही नहीं है, तो मैं कहां रहूंगा। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, जहां सोना है स्वर्ण वहां तुम जाके रहो, क्योंकि जहां स्वर्ण है जहां सोना है वहां पर ये सारी चीजें रहेंगी, वहां पर काम वासना रहेगी, वहां पर मदिरापान रहेगा, वहां पर झूठ बोलना रहेगा, वहां पर ईर्ष्या रहेगी, वहां पर शत्रुता रहेगी, सारे दुर्गुण वहां पर आएंगे जहां सोना चांदी है। तो जाओ उस जगह में जाकर रहो। और वास्तव में देखते हैं कि पैसे की वजह से सोने की वजह से क्या नहीं होता है। जहां पैसा होता है सारे बुरी आदतें सारे दुर्गुण सब कुछ आ जाते हैं। केवल जो व्यक्ति इस धन को इस सोने को भगवान की सेवा में लगाता है वो इस दुर्गुणों से और दुराचारियों से बच सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये धन ये सोना है क्या, ये लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी जी को नारायण की सेवा में लगाना है। अगर हम भी लक्ष्मी जी को नारायण की सेवा में न लगाते हुए उसका स्वयं भोग करने का प्रयास करें तो ये रावण की वृत्ति है, और रावण की क्या दशा हुई वो भी हमारी दशा होगी। इसलिए कली को ऐसा स्थान दे दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कलयुग में ये चार नियमों का भंग करना बहुत ही ज्यादा हो गया है, बड़ी मात्रा में चल रहा है। और आजकल ये चार नियमों को तोड़ने के लिए बहुत आसान तरीका कली ने बनाया हमारे लिए।
बहुत सरल तरीका, वो कौन सा है? टीवी है। ये टीवी के माध्यम से हमारे सारे संस्कृति को, भक्ति को, जीवन को, सब ये नष्ट करता है ये टीवी। क्योंकि जो व्यक्ति टीवी देखता है ये चारों नियमों का भंग करता है। सही बात है। टीवी में क्या दिखाते हैं? यही सब दिखाते हैं। इसलिए जो धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं, जो अधर्म से दूर रहना चाहते हैं, इस टीवी को घर के बाहर निकालेंगे। क्योंकि जब तक ये टीवी है, ये कोई अपने भक्ति के बारे में कोई प्रोग्राम दिखाते नहीं, दिखाते भी हैं भी उसमें ज्यादा हमारे भक्त कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि नाना प्रकार के बाबा स्वामी आते हैं, अपने अपने धारणा बताते हैं भगवान के बारे में, तो भक्ति में प्रगति करने के बजाय आदमी बेचारा भ्रमित भी हो सकता है। इसलिए टीवी इतनी बुरी चीज है आजकल के जमाने में, ये कलयुग कली का सबसे बड़ा यंत्र, सबसे बड़ा शस्त्र बन गया है भक्ति को नष्ट करने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति इस कली के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, जो भक्ति भाव को अपने हृदय में रखना चाहता है, आज के आज इस टीवी को उठा के बाहर निकालेगा। क्या ये वचन कठोर लगते हैं ज्यादा? लेकिन टीवी देखने का परिणाम इससे ज्यादा कठोर होगा, इससे ज्यादा कड़वा होगा। जिनको इसका एहसास करना है, अनुभव करना है, वो कर सकते हैं। लेकिन बात ये सही है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं टीवी में कि इसके ऐसे भागवत क्लास में, ऐसे मंदिर में इनकी बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दशा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यहां ऐसे सत्संग में आएं और हमारा मनोरंजन भी यही हो, हमारा उद्धार भी यही हो। हमारा मनोरंजन कैसे हो? भगवान के कार्य, भगवान के कथा, भगवान का संकीर्तन, भक्तों का संग, इसी में हमारा मनोरंजन हो, और अन्य कोई कार्य नहीं। अगर बच्चे कहीं और जाते हो टीवी देखने के लिए, तो उनके घर में ऐसे वातावरण बनाइए, ऐसे उनको कहानियां भगवान की सुनाते रहिए जिससे कि उनका आकर्षण वहां न हो। ऐसा माहौल बनाना चाहिए घर में जिससे लोग दूसरों के घर में जाके ये टीवी देखने के लिए आकर्षित न हो। इसलिए चाहिए कि हर एक घर में भक्तिमय वातावरण हो। इसलिए आप सबसे एक निवेदन है, आप सब इस निवेदन को पालन करेंगे? कोई भी हाथ ऊपर नहीं। आप कितने कितने लोग आप में से हम जो भी निवेदन करने वाले हैं उसको आपके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे? हाँ, हमें भी करना चाहिए, हम बोल रहे हैं, हमें भी हाथ ऊपर रखना चाहिए। दो निवेदन करेंगे आपसे कि पहली बात, आज से टीवी देखना बंद, पूरी तरह से। खबर भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम खबर देखने के लिए सुनते हैं, देखते हैं, फिर धीरे 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 से अगला कार्यक्रम क्या है, पिछला कार्यक्रम क्या है, वो शुरू हो जाता है। और दूसरी बात कि आपके घर में आप कम से कम हर रोज शाम को 15 मिनट कम से कम अपने कुटुंब के परिवार के सदस्यों के संग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हर एक घर में अगर ऐसा कीर्तन चलता रहे तो फिर टीवी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो कृपा करके ये दो चीजें अगर आप करेंगे और फिर मंदिर में आते रहेंगे जैसे जैसे समय मिले, जैसे रविवार के कार्यक्रम के लिए, उत्सव के लिए, और यहां आकर कृष्ण कथा सुने, श्रील प्रभुपाद के सुंदर ग्रंथों का अध्ययन करें, तो अवश्य आप देखेंगे कि कली का प्रभाव आपके घर में और आपके हृदय में नहीं आएगा, कली आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम बचकर नहीं रहे कली से, तो कली हमारे घर में छा जाएगा, हमारे हृदय पर आक्रमण करके काबू कर लेगा अपने हृदय को। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी बड़े उत्साह से ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करें, भक्तों का संग करें, और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
एक कंप्यूटर से जो इंटरनेट है उसमें तो ऐसे दिखाते हैं कि जो टीवी में ऑब्स्ट्रक्शन है थोड़े बहुत, और इंटरनेट में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है कि सब अगर वेबसाइट ओपन करेंगे पर्टिकुलर तो आप भ्रमित हो जाएंगे ऐसे, इसके बारे में क्या बताएंगे?
आपको कैसे मालूम?
बिकॉज आई एम गोइंग स्टडी सम पीपल टू डू।
हमको इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए।
तो कंप्यूटर भी बंद करना चाहिए ऐसा आपके?
कंप्यूटर अगर सही तरह से भगवान के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा इसके ऊपर बहुत संयम रख के करना है। जितना आवश्यक है उतना ही करना, उसके बाहर नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें सब चीजों से, जहां से भी कली आक्रमण करे, प्रवेश करे, हमें बच के रहना चाहिए। ये कंप्यूटर और भी भयानक चीज है, बहुत भयानक चीज है ये कंप्यूटर। ये तो अगर टीवी जो है ये बम है कली के हाथ में, तो ये कंप्यूटर एटम बम है। सारे माया इससे आ सकती है और आती भी है।
कृष्णा,
हरे कृष्णा।
आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोग ये अधर्म के जो चार खंभे बताए हैं उनका प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ साथ भगवान की पूजा भी करते हैं, तो ये किस तरह का नाटक है और भगवान इसे कैसे स्वीकारते हैं?
नहीं, ऐसा जैसे कोई रसोई घर में कोई आग जलाए रसोई करने के लिए, फिर उसके ऊपर पानी डाले, फिर आग जलाए फिर पानी डाले, तो कोई देखता हुआ आदमी बोलेगा आप क्या करना चाहते हैं? रसोई करना चाहते हैं तो ऐसे कैसे होगा, काम नहीं बनेगा। तो जो लोग लंबे समय तक ये चार नियमों का पालन नहीं करते हैं, वर्जित कार्य करते रहते हैं, साथ साथ भक्ति करते हैं, तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कोई हृदय से सिंसियर है लेकिन मजबूरी आदत पड़ने की वजह से वो आदत छूट नहीं रही है, लेकिन वो छोड़ना चाहता है और भक्तों का मार्गदर्शन, उनका आदेश स्वीकार करने के लिए तैयार है और भक्तों के संग में आ रहा है, तो धीरे धीरे से आदतें छूट जाएंगी। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर सकते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहरित चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जिसके हृदय में भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के प्रति बहुत तीव्र इच्छा है, समाधौ न विधीयते, समाधि उसके मन में भगवान के भक्ति के एकाग्र चित्त जो है वो नहीं आ सकता। व्यवसायात्मका बुद्धि, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि भक्ति करने के लिए ये चार चीजें हम छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये चार चीजें छोड़ने से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, नहीं। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो भी अड़चने हमारे रास्ते में हैं उनको निकाल रहे हैं। जैसे अगर रास्ते में कोई कांटे हैं तो केवल कांटे निकालने से हमारे गंतव्य स्थान को हम पहुंच नहीं पाएंगे, कांटे निकालकर हमें आगे चलना भी है। ठीक उसी तरह से ये चार नियम का पालन करने से हम सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। सत्व गुण में स्थित होकर हम भगवान का शरण ले सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण में रहकर भगवान का शरण लेना प्राय असंभव है, लेकिन कोई अगर व्यक्ति तमोगुण रजोगुण में भी हो लेकिन उसे मार्गदर्शन किसी ने नहीं दिया है, और अगर आ जाता है मंदिर में सुनकर, वो भक्ति करने का इच्छुक है, छोड़ने का इच्छुक है बुरी आदतों का, तो धीरे धीरे प्रगति वो कर पाएगा। ठीक है,
कांदा लहसुन क्यों छोड़ना चाहिए?
कांदा लहसुन इसलिए छोड़ना चाहिए कि ये रजोगुण का पदार्थ है। ये चार चीजें रजोगुण और तमोगुण में है, और जो भक्ति करना चाहता है उसे सत्वगुण में आना चाहिए। जब तक आदमी सत्वगुण में नहीं रहेगा वो
भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्रभुपाद जी इसके बारे में सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। अगर किसी व्यक्ति को हवाई जहाज पकड़ना है, एरोप्लेन, तो अपने घर के छत पे जाएगा और ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है तो उड़ के उसको पकड़ के जा सकता है? उसमें नहीं जा सकता। उसे क्या करना चाहिए? हवाई अड्डे पे जाना चाहिए, हवाई अड्डे में जाकर टिकट खरीदना चाहिए, फिर जाकर वो हवाई जहाज में बैठेगा, फिर जहाज हवाई जहाज जाएगी वहां को ले जा पाएगी। तो ठीक उसी तरह से भगवान को प्राप्त करना है तो रजोगुण तमोगुण से छलांग मार के भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। पहले अपने को सत्वगुण में जाना है, मतलब एयरपोर्ट में जाना है, हवाई अड्डे में जाना है। लेकिन हवाई अड्डे में जाकर भी आप वहीं बैठ गए, टिकट नहीं खरीदा, वहीं पर सो गए, तो फिर भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी तरह से सत्वगुण में जाकर हम बैठ गए, जैसे चार नियमों का पालन किया लेकिन मंदिर नहीं आए, जाप नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, उल्टा हमें पतन हो जाएगा, हमारा सत्वगुण को भी बनाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए जिस तरह से एयरपोर्ट में जाना काफी नहीं है, एयरपोर्ट में जाकर टिकट खरीद कर जहाज में बैठना जरूरी है, उसी तरह से चार नियमों का पालन करना काफी नहीं है, पालन करके भक्ति करना आवश्यक है। तो जो भी इसके लिए अनुकूल है सत्वगुण में स्थित होने के लिए, वो हमें करना चाहिए। और ये कांदा लहसुन ये भी रजोगुण के पदार्थ है, इसलिए हम इनको त्याग देते हैं, मन को विचलित करते हैं, मन को स्थिर रहने नहीं देते हैं। कांदा लहसुन को गंध से ही हम पहचान सकते हैं। क्या कांदा लहसुन का गंध अच्छा होता है? नहीं। जो सत्वगुणी आहार होता है इसका गंध कैसा होता है? अच्छा होता है ना। जो रजोगुणी आहार होता है उसका गंध कैसा होता है? कांदा लहसुन का। और जो तमोगुणी आहार होता है, मांस का, शराब का, उसका गंध कैसा होता है? तो गंध से हम जान सकते हैं कि कौन सा वस्तु किस श्रेणी में आता है। इसलिए हमें केवल सत्वगुणी आहार ग्रहण करना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ द्रवा स्मृति ही। तो जब हम आहार शुद्ध करेंगे तो हमारा सत्व शुद्ध हो जाएगा, अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे ध्रुव जो हमारी स्मृति शक्ति है वो शुद्ध हो सकती है, फिर हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और एक आखिरी प्रश्न किसी को अगर हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कृपा करके हरिनाम संकीर्तन में उत्साह से शामिल हुए।
बिलोरुण पूरब भागे द्विजमणि गोरा अमनि जागे, दिलारुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भगत समूह लोया साथे गेला नगर ब्राजे, भगत समूह लोया साथे गेला नगर ब्राजे, ताथे बाजल खोल घन घन ताहे झंझर रो, ताथे बाजल खोल घन घन ताए ज जांझे ना रो प्रेम ढाला ढाला सोना रंग चरण नूपुर बाजे प्रेम ढाला ढाला सोना रंग चरण नूपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भोरी मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भोरी मीछे निदावशे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे मीछे निदावशे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे एमन दुर्लभ मानव देह पाया की करो भावना के हो एमन दुर्लभ मानव देह पाया की करो भावना के हो एबे न भाजिले यशोदा सुता चर में पोड़ी बोलाजे एबे न भाजिले यशोदा सुता चर में पोड़ी बोलाजे उदित तपन होइलो अस्त दिन गेलो बोले होइबे व्यस्त उदित तपन होइलो अस्त दिन गेलो बोले होइबे व्यस्त तबे केनो एबे आलस हय ना भजरे दयराजे तब केन एबे अलसाय न बजरे दयराजे जीवन नित्य जन सार ताहे नानाविध विपद भार जीवन नित्य जन सार ताहे नानाविध विपद भार नामाश्रय करि जतने तुमि थाकह अपन काजे नामाश्रय करि जतने तुमि थाकह अपन काजे जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसी मधुर नाम जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम अविद्या मेरा तपना रूपे हृदय गगन विराजे अविद्या मेरा तपना रूपे हृदय गगन विराजे कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नहीं कवार चौदह भुवन माझे नाम बिना किछु नहीं कवार चौदह भुवन माझे उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गोरा मन जागे भगत लोक भगत समूहालोया साथे गेला नगर ब्राजे हरे कृष्णा। तो मैं अरुणोदय के समय गाया जाता है, लेकिन भगवान के नाम के लिए कोई सीमा नहीं है। हर दिन हर क्षण अरुणोदय है। जहां कृष्ण का उदय हृदय में होता है तो वो भी अरुणोदय कीर्तन हो सकता है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ बहुत सुंदर भजन है और ये वर्णन करता है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों को लेकर नवद्वीप में नदिया में नाम संकीर्तन किया करते थे गली गली में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितने मधुर ढंग से भजन कीर्तन होता था और नृत्य होता था। आप सब समझे हम क्या बताने जा रहे हैं। जो प्रामाणिक भजन कीर्तन होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, जिस चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सिखलाया है।